जब हम व्यस्त बुद्धि का चिंतन करते हैं तो वे हैं ब्रह्मा। तो अब ये जो शंकर जी हैं, ये समष्टि अहंकार के देवता हैं। तो जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कार्य कैसे करता है? अपने अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर के करता है। यदि मैं तपस्या करूं तो मैं अपने अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर के तपस्या करता हूं। कर्म के पीछे अहंकार रहता ही है, चाहे मैं अच्छा काम करूं तो, चाहे मैं बुरा काम करूं तो, उन दोनों कार्यों के पीछे अहम की भावना कार्यरत रहती है। और यह जो व्यष्टि अहंकार जो कार्य करता है उसका फल कौन देता है? उसका फल समष्टि अहंकार देता है। व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं अपने कर्म जो करता हूं तो मैं फल ही प्राप्त करूंगा, क्या मनुष्य अपने कर्म का फल स्वयं प्राप्त कर सकता है? संभव नहीं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल वह नहीं पा सकता। वह तो फल हम कहेंगे कि प्रकृति उसे प्रदान करती है, कर्म का सिद्धांत उसे प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान है, उसने बहुत कोशिश की, जमीन बहुत खराब थी, उसने जमीन को बहुत बढ़िया बनाया, उसमें खाद डाली, तरह तरह से उसने जमीन में परिवर्तन साधित किया और उसने जमीन को बहुत सुंदर बना दिया। कहीं से बढ़िया किस्म के बीज लाता है और बीज बोता है, जल सिंचन की व्यवस्था करता है, पानी भरपूर देता जाता है, फसल लहलहाने लगती है। अब वह सोचता है कि बस 10-15 दिन के बाद मैं फसल को काट लूंगा। लोग आकर के देखते हैं कि कितनी सुंदर फसल है, पूछते हैं, वह तो यही कहता है कि इस पर मैंने बड़ा परिश्रम किया है, उत्तम किस्म की खाद डाली है, उत्तम किस्म के बीज मैंने बोए हैं और पानी मैंने बहुत सिंचित किया है, बड़ा परिश्रम मैंने किया है, यह वह कहता है। और उसके साथ ही साथ यह भी कहता है कि देखो, अब मैं 7-8 दिन में फसल को काटने वाला हूं। और तब एक दिन क्या होता है, इसी बीच में ओले की वृष्टि हो जाती है, सारा जो फल दिखाई देता था, जितनी फसल दिखाई देती थी सारी की सारी चौपट हो जाती है। तब क्या हमें जो व्यष्टि अहंकार से कर्म करता हूं तो व्यष्टि अहंकार ही मेरे इस कर्म का फल दे सकता है? नहीं, फल देने वाला वह समष्टि अहंकार। और इसीलिए चाहे असुर तपस्या करे, कोई कर्म करे, चाहे देवता कोई कर्म करे, उसका फल तो इस समष्टि अहंकार को ही देना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान शंकर असुरों को भी फल देते हैं, वरदान देते हैं, और देवताओं को भी वरदान देते हैं। अब शंकर जी बहुत भोले भाले हैं, उनका हृदय बहुत साफ है, और भक्त जो मांगता है वह वे दे देते हैं। इसीलिए ये जो बुद्धि के देवता हैं, ये इनके साथ साथ चला करते हैं कि कहीं शंकर जी कुछ कहे ना, एकदम से वरदान न दे दें, इसीलिए ब्रेक का काम करते हैं। कहते हैं कि नहीं भगवान, ऐसा तैसा वरदान आप मत दे दीजिएगा, आप ठहरे औढ़दानी। भक्त ने चाहा, आपने दे दिया, हम विपत्ति में पड़ेंगे, क्योंकि विधान तो हमने बनाया है और विधान के अनुसार सब कुछ चलना है, और आप कुछ ऐसा वरदान दे दें जिससे विधान कट जाए तो यह हमें मंजूर नहीं। इसलिए ब्रह्मा साथ साथ चलते हैं, आए रावण के पास, और रावण से कहते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, बोलो तुम क्या मांगते हो, वरदान मांग लो। तो रावण जी तो बड़ा अटपटा वरदान मांगता है, उसने वरदान मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, यह रजोगुणी रावण है, उसके रजोगुण को व्यक्त करता है। रावण ऐसा भी तो कह सकता था कि आप मुझे अमर बना दें, पर उसे ऐसा मांगने की इच्छा नहीं होती, वह कहता है हम काहू के मर ही न मारे, इसका मतलब कि हम दूसरों को तो मारे पर दूसरे यदि मारे हमें तो हम मरे नहीं। यह विचित्र बात है, उसमें मरने और मारने के संस्कार, कटने और काटने के संस्कार, परंतु वह स्वयं चाहता है कि दूसरे मुझे मारे तो मैं न मरूं, और इसीलिए उसने मांग लिया कि हम काहू के मर ही न मारे। फिर रावण के मन में एक विचित्र बात आती है, ब्रह्मा जी वह विचित्र बात पैदा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को चिंता होती है, इसलिए चिंता होती है कि अगर कोई इसे नहीं मार सका तब तो यह अमर बन जाएगा, अब पहले ही ब्रह्मा जी घोषणा कर देते हैं कि अमरता का यह जो वरदान है किसी को नहीं मिलेगा, और इसीलिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार से वरदान मांगते हैं, ब्रह्मा जी को फंसाने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार ब्रह्मा जी फंस जाए कि ठीक है अच्छा आप अमरता का वरदान नहीं देते ब्रह्मा जी, तो यही वरदान दे दीजिए कि हम किसी के मारे ना मरे। अरे आखिर वही तो हो गया। तो ब्रह्मा जी एक स्फुरणा करते हैं सरस्वती के माध्यम से रावण की बुद्धि में। रावण मन में विचार करता है, उसके अहंकार को ब्रह्मा जी जगा देते हैं। विचार करता है, अच्छा देखो यदि ऐसा हो गया तो संसार में हम लोगों से युद्ध करेंगे और किसी से नहीं मरेंगे। तब जब हम कहेंगे कि देखो हम किसी से नहीं मरते, तो कोई कह देगा इसमें आपके बल की क्या बात है, आपको तो आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है, वरदान के कारण आप नहीं मरते हैं। अरे तब तो मेरी शक्ति की, मेरे वीर्य की कोई प्रशंसा नहीं होगी, लोग कहेंगे कि वरदान के कारण मैं अजय हूं। रावण का अहंकार जागा, उसने एक संशोधन कर दिया। हम काहू के मरहि न मारे बानर कप, जहां पर वो कहते हैं बानर नर कपि बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर और मनुज ये दो जाति को छोड़कर के हम किसी से नहीं मरे। हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे, ये दो जातियां छोड़ दें। क्यों दो जातियां छोड़ दें? रावण ने मन में विचार किया कि नर कपि भालू आहार हमारा, ये जो नर है कपि बंदर है भालू है, ये तो हमारा आहार है, ये तो हमारा भक्षण है भोज्य है, तो हम तो इसका भोजन करते हैं, तो ये बानर और मनुष्य हमें क्या मार सकते हैं। और इसीलिए रावण ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि ठीक है कि हमें कोई मत मार सके, हम बाकी सबको मारें पर किसी के मारने से हम ना मरें। अच्छा ये जो दो जातियां हैं तो ये दो जातियों को छोड़ करके हम किसी से ना मरें, वानर और मनुष्य। मन में यही विचार था रावण के कि ये तो हमारे भोजन है। रावण भूल गया कि भोजन यदि हमारे भीतर शक्ति देता है, भोजन यदि जीवन देता है तो भोजन मृत्यु भी देता है। हम बहुत से लोग ज्यादा खा करके ही मरते हैं, अगर संख्या एक बार ली जाए तो मनुष्य भोजन करके ही मरता है, भोजन उसके लिए विष है काल है। ये रावण भूल गया और वह क्या सोचता है कि यह तो हमारा भोजन है और हम इससे क्या मरेंगे। दे देते हैं भगवान शंकर यह वरदान। और जब वे लौटते हैं कैलाश में, पार्वती जी ने पूछा कि क्या देकर के आए, क्या मांगा। कहा उन्होंने कि रावण भी बड़ा अजीब है, रावण ने मृत्यु का वरदान मांगा। पार्वती जी चौंकी, कहा कि रावण और मृत्यु का वरदान मांगे, इतने वर्ष तपस्या करने के बाद। कहा शंकर जी ने यही बात तो हो गई। रावण सोचने लगा, देखो ये ब्रह्मा और शंकर आए हुए हैं। रावण ने मन में विचार किया कि अच्छा ब्रह्मा जी ने कहा है कि अमरता का वरदान नहीं मांगना, तो मैं भी जरा देख लेता हूं ब्रह्मा जी को। उसने मन में गणना की, ब्रह्मा जी के चार सिर, शंकर के पांच, दोनों के मिलकर के नौ ही होते हैं, मेरा तो एक ज्यादा है, मेरे तो दस सिर हैं। उसने विचार किया कि मैं तो अधिक विचारवान और बुद्धिमान हूं। पार्वती जी से कहते हैं उसने मृत्यु का वरदान ही मांगा। पार्वती जी ने कहा कि आप पहली क्यों बुझाते हैं, समझाइए ना मृत्यु का वरदान कैसे मांगा। तो कहा शंकर जी ने, भाई इससे पहले तक मालूम नहीं था कि वह किससे मरने वाला है, पर अब तो मालूम हो गया, या तो वानर उसे मारेगा या नर मारेगा, ये दो मारेंगे, इन्हीं दो जातियों के द्वारा वह नष्ट होगा। उसने अपनी मृत्यु मांग ली, यह रावण है। अब ये दोनों के दोनों जिस समय चले, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी आए जिस समय कुंभकर्ण के पास, और उससे कहते हैं कि वत्स तुम्हारी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। तो वरदान मांग लो कहते तो हैं, पर उसके डील डॉल को देख करके चौंकते हैं। इसलिए चौंकते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि डील डॉल को देखा तो ऐसा लगा ब्रह्मा जी को कि यह आदमी अगर ज्यादा दिन तक जिंदा रहा तब तो सारे शरीर के संसार का नाश कर डालेगा, यह तो खाएगा कितना, इसका डील डॉल कितना बड़ा है। जो चित्रण हम पढ़ते हैं भूधराकार शरीर, पर्वत के समान विशाल उसका शरीर है। तो वहां पर जब गए तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं, जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई। अगर यह रोज भक्षण करे तो इसे तो बहुत सी चीजें चाहिए, और यह भक्षण करेगा और विश्व एकदम उसका नाश हो जाएगा बहुत शीघ्र। और इसीलिए वे शारद प्रेरी तासु मति फेरी मांगे से नींद मासु शत केरी, कि उन्होंने शारदा को माध्यम बना करके ऐसी प्रेरणा कुंभकर्ण की बुद्धि में उपजा दी कि कुंभकर्ण पहले कहने वाला था कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं, तो उल्टी उसकी बुद्धि हो गई, उसके मुख से निकल गया कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन जगूं, और दोनों के दोनों बहुत जल्दी तथास्तु कह देते हैं उल्टी बुद्धि करके। अब इसका मतलब क्या है, यह जो कुंभकर्ण है, यह कुंभकर्ण इतना बड़ा दिखाया गया, पढ़ करके विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति क्या इतना बड़ा हो सकता है। पर यदि हम तुलसीदास जी के उन शब्दों पर गौर करें जो शब्द वे विनय पत्रिका में लिखते हैं कुंभकर्ण का वर्णन करते हुए, तो बात समझ में आती है। कुंभकर्ण क्या है, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, वह अहंकार है, अहंकार का प्रतीक है। अब आप अहंकार की कोई सीमा रेखा खींच सकते हैं कि अहंकार कितना बड़ा हो सकता है, क्या कभी आप उसकी कोई सीमा कर सकते हैं कि मेरा अहंकार कितना बड़ा हो सकता है, मनुष्य का अहंकार कितना बड़ा हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं। इस अहंकार को हम सीमित नहीं कर पाते, और इसीलिए दिखाया गया कि यह कुंभकर्ण जो है वह अहंकार है, पर्वत के समान उसका शरीर है और बहुत खाता है। आप अहंकार को तृप्त कर सकते हैं, वह कुंभकर्ण है, काम के सहारे खाता है अहंकारी व्यक्ति, वह भोजन नहीं, वह जो भोजन ग्रहण करता है काम के सहारे। अब कितना आप मुझसे कहते तो रहिए, भले मैं कहूं देखिए आप आए मेरे पास या आकर के कहते हैं स्वामी जी मैं बस कुछ समय चाहता हूं, तो मैं पहले तो कहूंगा कि बहुत व्यस्त हूं स्वामी जी, मैं बस कुछ नहीं, आपने कितना बढ़िया प्रवचन दिया था बस उसी के संबंध मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता, पर मेरे मन में जो प्रशंसा के भाव जगे हैं वही सुनाना चाहता हूं, मेरी व्यस्तता कहां चली गई, अभी तो मैं कह रहा था 1 मिनट का समय नहीं है। अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए, और वह प्रशंसा करता है, बीच में कहता है नहीं स्वामी जी आपको देर हो रही, अरे नहीं बैठो, अब मेरी व्यस्तता कहां गई। यह जो कुंभकर्णत्व है यह अहंकार कितना खा सकता है, आप उसकी कोई सीमा बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते, आप जितना खिलाइए वह उतना ही खा जाएगा, कान बिल्कुल अग्रसर रहते हैं, और इसीलिए उसे कुंभकर्ण कहा है, जिसके कान घड़े के समान बड़े हों, तो ऐसा वह कुंभकर्ण है, तो कितना भक्षण कर सकता है। और यदि वह हरदम जागता रहे, अहंकार कभी कभी जागे वह तो ठीक है, क्योंकि अहंकार अगर सोया रहे तो उससे काम भी तो नहीं होता, पर हरदम अगर जागता रहे तो वह भी बहुत मुश्किल है, वह कितनी तकलीफें दे सकता है, कितने युद्ध करा सकता है। अभी हम सबका जो कुंभकर्ण है वह सोया हुआ है, इसलिए यहां पर शांति है। अब इस सभा में अगर 2 व्यक्तियों का कुंभकर्ण जाग जाए तब समझिए कि सभा हो ही नहीं सकती, केवल कोलाहल, केवल युद्ध, केवल 2 ही व्यक्तियों के कुंभकर्ण के जागने से। तो अच्छा है यह कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता है, पर उसे जागना भी है, उसके जागने से कर्म भी होते हैं, और इसीलिए कहा कि तुम 6 महीने तक सो और 1 दिन उठो। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इस नियम का अगर पालन करोगे तब तो तुम ठीक रहोगे, बचे रहोगे कि 6 महीने तक तुम सोना 1 दिन जागना, और अगर इस नियम में किसी प्रकार का व्यतिक्रम हो गया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो रावण 6 महीने से पहले ही कुंभकर्ण को जगा करके उसका नाश करा देता है, कुंभकर्ण का नाश होता है। तो यह चित्रण। अब जब ये लोग विभीषण के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मांगो, तो उन्होंने क्या बर मांगा, ते ही मांगे भगवंत पद चरण कमल अनुराग, चरण भगवान के चरण कमलों में अनुराग की प्रार्थना विभीषण करते हैं, ये सत्वगुणी है। रावण रजोगुणी है, कुंभकर्ण तमोगुणी है, विभीषण सत्वगुणी है। सत्वगुणी ने भगवान के चरण कमलों में विशुद्ध अनुराग मांगा, कहा कि प्रभो आपके चरणों में मुझे अनुराग हो। यह जीव की प्रार्थना है जिसके भीतर में सत्व का अधिक अंश है। अब विभीषण की मुश्किल यह है कि भगवान के चरणों में अनुराग की प्रार्थना तो की, वरदान तो मांगा, पर रहते हैं रावण कुंभकर्ण के साथ, उनको रहना इन्हीं के साथ है। और हम पढ़ते हैं रावण कैसा है। रावण ने हरदम इस पर विश्वास किया कि दूसरे की कोई भी अच्छी चीज हो उसको छीन करके अपने वश में कर लो। लंका नगरी कुबेर की नगरी थी, यक्ष वहां पर पहरा दे रहे थे। रावण घूमने के लिए निकला था और उसने देखा कि यह स्वर्ण की लंका है और कितना यहाँ पर माणिक्य है, कितना स्वर्ण है, और यह अद्भुत यह लंका नगरी दिखाई देती है। उसने चढ़ाई कर ली, लंका नगरी पर कब्जा कर लिया और हम पढ़ते हैं कि उसने अपनी राजधानी वहीं बसा ली। यह है रावण, और रावण के साथ ही चलने वाला है कुंभकर्ण, और इन दोनों के साथ में विभीषण रहते हैं। इधर उन्होंने भगवान की भक्ति की याचना की और इधर रहते हैं रावण और कुंभकर्ण के साथ। यह जो लंका की सुनहरी नगरी है यह प्रवृत्ति की नगरी है, प्रवृत्ति बहुत सुनहरी मालूम पड़ती है। यह जो संसार है कितना सुनहरा लगता है, संसार का वैभव, संसार का मान यश, संसार की संपत्ति कितनी सुनहरी मालूम पड़ती है। तो यह जो लंका नगरी है, इस लंका नगरी में यह जीव साधक विभीषण बैठा हुआ है, उसे यह नगरी अच्छी लगती है, यह प्रवृत्ति की नगरी है। और इधर वह भगवान को भी चाहता है, उसने वरदान भी मांगा कि मुझे भगवान के चरण कमलों में अमल भक्ति हो, ऐसा वरदान भी मांगता है। और इधर लंका नगरी में निवास करना, दस्युओं के बीच रहना, असुरों के बीच रहना, ये जो असुर है ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये दुर्गुण है, मनुष्य के भीतर की दुर्वृत्तियां हैं। तो यह जो सुनहरी प्रवृत्ति की नगरी है, जो दुर्वृत्तियों के द्वारा घिरी हुई है, उन्हीं से संवेष्टित है, ऐसी नगरी में यह जीव साधक रहता है और वह भगवान की भक्ति की कामना करता है। कैसा, जिसे कहेंगे विरोधाभास है, विचित्र सा, कि विभीषण यहां रहकर के भगवान की भक्ति चाहते हैं और रावण के साथ समझौता भी चाहते हैं। रावण को किसी प्रकार खुन्न नहीं करना चाहते, वे रावण को किसी भी प्रकार नाराज नहीं करते, रावण को प्रसन्न रखते हैं और यही मन में विचार करते हैं कि देखो रावण में कैसे गुण हैं। भले ही रावण बाहर के लिए वह दुर्गुणी हो, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के प्रति भी मेरा कर्तव्य होता है। पर उन्होंने मेरे लिए देखो कितना सुंदर विचार किया, मेरे लिए उनके मन में कैसी सद्भावना है, ऐसा विचार करके विभीषण रावण कुंभकर्ण इत्यादि के साथ मानो वहां पर समझौता करके विद्यमान है। और यह बड़ी विचित्र बात, विचित्र बात इसलिए है कि विभीषण भगवान की भक्ति की याचना तो करते हैं पर भगवान की ओर आगे जा नहीं पाते हैं। मन में इच्छा तो है पर उस इच्छा के अनुरूप उनको साधना में उन्नति नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि रावण के साथ, दुर्वृत्तियों के साथ समझौता है। और यह एक सत्य सिद्धांत है कि जब तक दुर्गुणों में एक भी गुण दिखाई दे, किसी दुर्गुण में जब तक एक भी गुण दिखाई दे तब तक उस दुर्गुण का नाश नहीं होता। रावण का नाश कब होगा, रावण से दूर हम कब जाएंगे? जब रावण में कोई भी गुण दिखाई नहीं देगा तब हम रावण का त्याग कर सकते हैं। पर रावण में यदि एक भी गुण दिखाई देगा तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते। विभीषण हरदम यही सोचते हैं कि रावण मेरे बड़े भाई, वे मुझ पर कितनी कृपा रखते हैं, मुझे कितना स्नेह देते हैं। देखो जब किसी ने विभीषण से कहा कि भगवान को पाने के लिए तो फिर का त्याग करना पड़ेगा, इस सुनहरी प्रवृत्ति की नगरी में से आपको निकल जाना पड़ेगा, तो कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूं अपने बड़े भाई को, मेरे लिए देखो मंदिर बनवा दिया है, उपासना के लिए सारी सुविधाएं कर दी हैं। और कहा है विभीषण मुझे तुम्हारे भगवान भगवान में विश्वास नहीं है, पर तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे लिए मैंने मंदिर बनवा दिया, तुम पूजा कर सकते हो, पर मैं किसी ईश्वर ईश्वर को नहीं मानता। मेरे भाई मेरे संबंध में कितना ख्याल करते हैं, यह विभीषण की धारणा और रावण ने मंदिर क्यों बनवा दिया? बड़ा मनोवैज्ञानिक, यह जो रावण है वह भी बड़ा मनोवैज्ञानिक। रावण को ऐसा लगता है कि जब मैं हिरण्यकशिपु था पिछले जन्म में तो मैंने ईश्वर की भक्ति का विरोध किया, मेरा लड़का प्रह्लाद ईश्वर का बड़ा भक्त निकला और मैं सतत उसका विरोध करता रहा और विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि 5 वर्ष की अवस्था में उसने भगवान को पा लिया। तो इस समय अब जब इस बार मैं रावण के रूप में आया हूं तो जरा देखूं कि अब इसका विरोध तो ना करूं, एक बार विरोध न करके देखूं। ठीक है, वह ईश्वर में विश्वास करता है, मेरा भाई ईश्वर की पूजा करना चाहता है तो सुविधा कर दूं, जरा देखूं तो सही। रावण ने सोचा कि एक बार मैं सुविधा तो कर दूं तो देखूं शायद इससे भक्ति में कुछ फर्क पड़ता है क्या। बड़ा मनोविज्ञान, जब भक्ति की सारी सुविधाएं हो जाती हैं तो भक्ति नहीं होती, सुविधाएं तो मिल जाती हैं। हम लोग जब तक विपरीत परिस्थिति में रहते हैं तब तक सोचते हैं कि भाई यहां तो भक्ति नहीं होती, यहां तो भजन नहीं होता, यहां तो हमें बहुत झमेले हैं, जरा एकांत स्थान चाहिए जहां हम भजन करें, जरा ऐसी जगह चाहिए जहां हमारा भजन हो सके। और जब उस प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है तो भजन तो नहीं होता, सुविधाएं मिल जाती है। यह जीवन का सत्य है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है और रावण बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। कथा है, एक साधक नित्य नियम से 4 बजे सुबह उठता है, भगवान की पूजा करता, गुरु ने जिस प्रकार का बताया था उपदेश उसके अनुसार कार्य करता। एक दिन उसकी नींद जरा गहरी लगी, वह कुछ उठ नहीं पा रहा था। अचानक उसको ऐसा लगा कि कोई उसे उठा दे रहा है, हड़बड़ा करके आंखें मलते हुए वह उठा, देखा कि घड़ी में ठीक 4 बजे। अरे मैं तो गहरी नींद में सोया था, किसने मुझे उठाया। वह इधर उधर देखता है, देखा तो उसका दरवाजा कुछ खुला था, कुटिया का दरवाजा, और बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। क्या आपने मुझे उठा दिया? बाहर के व्यक्ति ने कहा कि हाँ।